विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत हिस् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ने देखा कि अपने पिता श्री नंद महाराज और अन्य वरिष्ठ गोप एक बहुत विशाल यज्ञ करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नम्रता पूर्वक जाकर उनसे पूछा कि इतना बड़ा कार्य क्यों किया जा रहा है, ये क्या है, क्या फल है इसका, क्या उद्देश्य है और क्या ये केवल परंपरा से चलते आ रहा है या शास्त्रों में भी इसका कोई आधार है। हमें स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि हम क्यों ये सब कर रहे हैं। तो नंद महाराज ने उत्तर दिया कि हम लोग गायों को संभालते हैं, गाय हमारे धन है और हम लोग पूरी तरह से वर्षा के ऊपर निर्भर हैं क्योंकि वर्षा से सब कुछ हमें प्राप्त होता है। वर्षा बादलों से आती है, बादल इंद्रदेव के प्रतिनिधि हैं, आत्मरूप। इंद्रदेव वर्षा के नियंत्रण करता है, इसलिए हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए जिससे कि हमारे इस ग्रामीण जीवन में हमें सुख संपत्ति मिल जाए। तो श्री कृष्ण अब इसका उत्तर देने जा रहे हैं। नंद महाराज ने कहा था कि ये तो प्राचीन काल से चलती आई परंपरा है और न केवल हम लोग कर रहे हैं लेकिन अनेक लोग, सभी लोग ऐसे करते हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य था कि वृंदावन के निवासी देवता इंद्र की पूजा न करें, क्योंकि देवराज इंद्र वो भगवान के भक्त हैं, परंतु इतने ऊंचे पद पर स्थित होने के नाते उनके हृदय में कुछ घमंड आ गया था। अपने ऐश्वर्य, संपत्ति, पद, बल आदि को बहुत अभिमान हो गया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस मान को भंग करना चाहते थे, अपने प्रिय भक्त इंद्र को पुनः सही रास्ते पे ले आना चाहते थे, उनको सही चेतना में पुनः स्थित करना चाहते थे। और इंद्रदेव जो कि देवताओं के राजा है, उनकी सही स्थिति क्या है कि वो भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। हम सब भगवान कृष्ण के दास हैं, चाहे कोई छोटा सा कीड़ा हो जिसका नाम इंद्रगोप होता है, या तो फिर देवताओं का राजा इंद्रदेव, हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना हमारा धर्म है, तो इंद्र ये भूल चुके थे, इसलिए कृपा करके भगवान श्री कृष्ण इंद्र के इस घमंड को नष्ट करना चाहते थे, और साथ साथ अपने प्रिय ब्रजवासी भक्तों को जो कि उनके नित्य पार्षद हैं, उनको याद दिलाना चाहते थे कि आप ये देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे वार्षिक दिव्य आनंद प्रदान करने वाला उत्सव का उद्घाटन करना चाहते थे, गोवर्धन पूजा। तो भगवान श्री कृष्ण अब ऐसे कोई तर्क प्रस्तुत करने वाले हैं जो वास्तव में उनके सही विचार नहीं है, नहीं वो शास्त्रों में ऐसे कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य इतना था कि बस नंद महाराज और अन्य गोपों को अपने संकल्प से वो हटाएं। उन्होंने संकल्प किया था इंद्रदेव की पूजा करने के लिए, और श्री कृष्ण चाहते थे कि ऐसे न हो, क्योंकि ऐसे पूजा करने से इंद्र का अभिमान और भी बढ़ जाएगा। जिस प्रकार से अगर कोई बीमार व्यक्ति होता है और डॉक्टर उससे कहता है कि ये चीज़ मत लेना, तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी, और वो चीज़ उस मरीज को, रोगी को बहुत प्रिय है, और कोई सोचता है कि अरे बेचारा ये तो बहुत मांग रहा है, चलो इसको दे दो, तो हम दे तो दिया उसको, लेकिन उसके लिए नुकसान होगा, हानिकारक होगा। तो हमें देखना चाहिए ये नहीं कि वो क्या चाह रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि क्या उसके लिए अच्छा है। जो हित के लिए है वो हमें करना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे मन में भी तरह तरह की इच्छाएं हैं, हम भी बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं दुनिया में, बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा मन क्या मांगता है। ये दिल मांगे मोर, ये तो चाहेगा ही ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मन की बात हमको नहीं सुनना है, हमको शास्त्रों की बात सुनना है कि मन जो भी भला मांगे लेकिन हमारे हित के लिए क्या है, वही हमने चाहना चाहिए। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, वो तो बहुत कुछ चाहते हैं, जो देखा वो चाहिए चाहिए चाहिए, वहां तलवार चाकू वो भी चाहिए, लेकिन माता पिता नहीं देंगे, ये तो चाकू है उससे हानि पहुंच सकती है। तो इंद्रदेव के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए तो इंद्रदेव उनके बच्चे जैसे हैं, हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, उनके बच्चों के बच्चों के समान हैं। तो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि इंद्रदेव को बहुत बड़ी बीमारी हुई है। क्या बीमारी है? घमंड। यहां दुनिया में पाई जाती है ना, बहुत की कम? बहुत। सभी में? सभी में। ये सबसे बड़ी बीमारी है घमंड। सबको लगता है कि हम कुछ विशेष हैं। जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो एक आदमी दूसरे से कहता है, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, कहते हैं ना ऐसे, कहते हैं ना मैं कौन हूं, अरे कौन हो तुम? भगवत गीता के अनुसार केशाग्र शतभागस्य, शतस्य कल्पितस्य च
कोई जरा
तो हम एक केवल कण मात्र आध्यात्मिक आत्मा है, बस ये हमारी पहचान है। तो फिर भी हम सोचते कि मैं कुछ हूं, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। ये जो हम समझते हैं ये शरीर, इसका तो नाश होने वाला है थोड़े दिनों में, तो फिर और क्या है समझने के लिए हमारे बारे में। हम तो केवल भगवान के दासों के दास हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के कण मात्र अंश हैं, ये हमारी असली पहचान है। तो भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया कि अगर ये ब्रजवासियों ने अब इंद्रदेव की पूजा की तो इंद्रदेव की बीमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि और घमंड आ जाएगा, हाँ देखो ये लोग भी मेरी पूजा करते हैं। इसलिए अच्छे डॉक्टर की तरह भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अभी कोई ऑपरेशन करना चाहिए। जब ऑपरेशन करते हैं तो भलाई के लिए होता है, लेकिन मरीज को दर्द होता है ना, सबसे पहले बड़ा डॉक्टर सुई लेके आता है, अरे रे 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 सुई मारना है अभी, तो सुई लगाते हैं, फिर सुई के बाद फिर काटना पुटना शुरू करते हैं, अंत में भलाई के लिए ही होता है। तो उसी प्रकार से अब भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे कार्य करने जा रहे थे, एक ऐसा ऑपरेशन करने जा रहे थे इंद्रदेव के चित्त के ऊपर, जिससे कि उनका घमंड चूर चूर हो जाए। और इस ऑपरेशन में जो कि इंद्र की भलाई के लिए था, इंद्र को थोड़ा कष्ट होना था। तो खैर कभी कभी क्या होता है, मरीजों को समझाने के लिए जब डॉक्टर को समझाना पड़ता है मरीज को, और मरीज के जो रिश्तेदार होते हैं कि ये ऑपरेशन करना चाहिए, बहुत कुछ समझाना बुझाना पड़ता है। तो यहाँ ये इंद्रदेव के उपासक हैं सारे ब्रजवासी, तो कृष्ण उनको समझाना बुझाना चाह रहे हैं कि देखो इंद्रदेव की पूजा नहीं करो। तो ये न के न प्रकार है किसी न किसी तरह से उनको समझाओ कि ये इंद्रदेव की पूजा बंद करो, ये उद्देश्य था कृष्ण का। इसलिए उन्होंने जो बातें कही वो सच नहीं है, झूठे सिद्धांत, झूठे दर्शन, झूठे तत्वों को उन्होंने कहा। लेकिन हालांकि श्री कृष्ण ने इन बातों को कहा, हम इनको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। क्योंकि किस उद्देश्य से भगवान ने ऐसे कहा हम जानते हैं, भगवान ने स्वयं यहां कहा है। जब नंद महाराज ने कहा कि हम इंद्रदेव की पूजा करने जा रहे हैं, तो उस समय फिर भगवान ने क्या उत्तर दिया, आइए पढ़ते हैं। यहाँ ये श्लोक है 10वें स्कंद के 24वें अध्याय का 13वां श्लोक। कर्मण जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते सुखं दुखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते सुखं दुखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। दो प्रभु जी दो माता जी बोलिए। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। भगवानुवाच कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। माताजी श्री भगवानुवाच कर्मण जायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से ही उसका विनाश होता है। उसके सुख दुख भय तथा सुरक्षा की भावना का उदय कर्म के प्रभावों के रूप में होता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहां कर्म सिद्धांत, और केवल कर्म सिद्धांत नहीं, कर्मवाद, कर्म मीमांसवाद, ये दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? कर्मणा जायते जंतुः। कर्मणा मतलब कर्म से, जायते उत्पन्न होता है, जंतु मतलब कोई प्राणी। तो हमारा जन्म होता है केवल हमारे कर्मों के फलस्वरूप, सही है। कर्मणैव प्रलीयते, कर्मणा एव प्रलीयते, कर्म से ही हमारा विनाश भी होता है, ये भी सही है। हमारे कर्मों के अनुसार हमें एक अमुक परिवार में जन्म मिला है, एक अमुक प्रकार का शरीर मिला है, हमारे जीवन में निर्धारित सुख और दुख होता है पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार, और फिर हमारी मृत्यु भी उसी प्रकार निश्चित है जैसे हमारे पूर्व कर्म है। तो इसलिए यहां भगवान कहते हैं कर्मणा एव प्रलीयते, तो हमारा विनाश ये भी कर्म के ही ऊपर आधारित है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, ये चार चीज, सुख दुख भय और क्षेम अर्थात सुरक्षा की भावना, कर्मणा एव अभिपद्यते, ये चार भी कर्म के ऊपर ही निर्भर है। सब कुछ कर्म के ऊपर निर्भर है, कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सर्वस्व है, कर्म से ही सब कुछ होता है। एक दृष्टि से ये ठीक है, लेकिन ऐसे सिद्धांत में आगे चल के ये क्या तर्क करते हैं कर्म मीमांसावादी, ये कहते हैं कि पीछे कोई भगवान नहीं है, कर्म ही सब कुछ है। वैसे भारत में अनेक दर्शन है, फिलॉसफी दो प्रधान भाग हैं इसमें, एक है आस्तिकवाद और दूसरे हैं नास्तिकवाद। आस्तिक मतलब जो वेदों को मानते हैं, भले भगवान को माने या ना माने लेकिन वेदों को जरूर मानते हैं। दूसरे हैं नास्तिकवाद, जो वेद को नहीं मानते, कहते वेद शास्त्र इसको हम नहीं मानते हैं। तो जो नास्तिकवाद है दर्शन, उनमें है तीन प्रमुख भाग। एक है चार्वक दर्शन, चार्वक को जानते हैं ना, नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चार्वक का सिद्धांत क्या था, खाओ पियो मौज करो, किसने कल देखा है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमनो भवेत। ऋण ले लो, चोरी करो, डकैती करो, इधर उधर से कमाओ पैसे, लेकिन घी से बनाया हुआ भोजन खाओ, ऐश करो, जब ये शरीर का नाश होगा, भस्मीभूतस्य देहस्य, देह ये भस्म हो जाएगा, किम पुनः आगमनो भवेत, ये पुनर्जन्म किसने देखा है, किसको मालूम है पुनर्जन्म है कि नहीं है। तो पुनर्जन्म जब है ही नहीं, तो इस जन्म के पापों को अगले जन्म में भुगतना है, ये सब कैसे होगा, सब होगा इसी जन्म में होगा, इसलिए जितना हो सकता है उतना भोग करो, इस तरह का सिद्धांत आपने सुना है, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। आजकल लोग ऐसे ही दर्शन को मानते हैं कि भगवान नहीं, पुनर्जन्म नहीं, कुछ नहीं, केवल भोग करो, खाओ और पियो। और गांव में, छोटे छोटे गांव में भी यहां पर ऐसे ही चल रहा है, लोगों के यहां प्रचार नहीं है, गीता भागवत का संदेश पहुंचता नहीं उनके कानों में, इसलिए यह समस्या है। अभी आज सुबह कोई भक्त बता रहे थे कि हमारे गोकुलधाम के जो आसपास थोड़े गांव हैं, उसमें हर रात को थोड़े गांव के लोग बंदूक लेकर शिकार करने जाते हैं। शिकार करते हैं रात में, वहां पशुओं को मारते हैं जंगल में, वहीं पे आग लगा के वो पका के खा के वापस चले आते हैं। ये इनका जीवन। और घर घर में शराब बनाने का कारखाना लग गया है। और एक कोई दूसरा छोटा सा गांव है, उसमें उस छोटे से गांव में हर दिन 10,000 रुपए का शराब एक दिन में बिकता है एक घर से। तो समझिए कितने लोग पीते होंगे। खाना पीना यही सब लोग जानते हैं, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा जीवन जीने से आगे क्या कर्म का फल मिलेगा उनको पड़ी नहीं है, किसने देखा है, देख लेंगे उस समय। तो यह है चार्वक सिद्धांत। न जानते हुए भी ये लोग चार्वक के शिष्य है। तो यह है चार्वकवाद। दूसरा है जैन और बौद्धवाद। बौद्धवाद ये भी एक नास्तिकवाद है क्योंकि ये वेद को नहीं मानते। उसी प्रकार से जैनवाद भी वेदों को नहीं मानते। वास्तव में तीनों ही भगवान को नहीं मानते। जितने भी नास्तिकवाद हैं वो भगवान को मानते ही नहीं है, साथ साथ वेद को भी नहीं मानते हैं। और जो आस्तिकवाद हैं, जो वेद को मानते हैं, उनमें से भी सभी लोग भगवान को नहीं मानते हैं, वो केवल वेद को मानते हैं। उनमें से है सर्वश्रेष्ठ तो है वेदांत दर्शन, जो व्यास देव जी का है, और जिसकी स्वाभाविक टीका है ये श्रीमद् भागवत। तो ये सबसे उत्तम है। और भी कई हैं, जैसे पतंजलि का योग दर्शन है, कपिल देव का सांख्य दर्शन है, साथ साथ में न्याय दर्शन भी है जो कि गौतम ऋषि ने किया, सामने प्रस्तुत किया, और फिर वैशेषिका कणाद ऋषि का है, और फिर है ये कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा दर्शन, इसको अभी श्री कृष्ण कह रहे हैं। कर्म मीमांसा में कहते हैं कि कर्म के अलावा कुछ नहीं है। कर्म हमारे जन्म का कारण है, कर्म हमारे मृत्यु का कारण है, कर्म हमारे सुख दुख भय सुरक्षा इत्यादि सब का कारण है। तो कर्म ही प्रधान है। वैसे ये कर्म मीमांसा या कर्मवाद सिद्धांत, ये पुनर्जन्म को मानते हैं ये लोग, लेकिन भगवान को नहीं मानते। कहते हम कर्म करते हैं तो कर्म का फल मिलता है, तो ऐसा कर्म करेंगे तो ऐसा ही फल मिलेगा, दूसरे प्रकार का फल नहीं मिलेगा। तो ऐसा करने से ऐसा होगा तो इसमें भगवान कहां आए। तो इसलिए वो कहते हैं कि पुनर्जन्म है, परंतु सब कुछ कर्म के सिद्धांत के अनुसार चल रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण बुद्ध देव के अवतार में आए तो उन्होंने जो नास्तिकवाद दर्शन प्रस्तुत किया, इसलिए हम बुद्ध देव का दर्शन नहीं मानते, हालांकि वो भगवान के अवतार माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कथन, उनका दर्शन शास्त्रों के आधारित पे आधारित नहीं है। तो अगर भगवान भी आके कुछ कहते हैं और उनकी बातें शास्त्रों से मिलती जुलती नहीं है तो हम नहीं मानते। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये शास्त्र, भगवान ने ही बनाया है। पहले भारत में आपस में अगर दो लोग बातचीत करते थे और एक व्यक्ति कुछ कहता था कि ऐसा है और दूसरा व्यक्ति उस बात से सहमत नहीं होता, तो वो कहता, अरे तुम जो बोल रहे हो वेद वाक्य है क्या कि मैं विश्वास करूं। कहने का मतलब है कि वेद वाक्य एक ऐसी चीज है जिसको समझ लेना चाहिए और उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें तर्क की कोई बात नहीं है। जैसे गोबर, ये शुद्ध है, ये वेदों का कथन है, ये सबसे ऊंचा प्रमाण है वेद शास्त्र, तो उसको मान लेना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक। वैसे बुद्धि लगाएंगे तो सोचेंगे अरे गोबर ये तो एक पशु का मल है, मल तो अशुद्ध होता है, तो तर्क से काम नहीं चलेगा। वेदों ने कहा है कि गोबर शुद्ध है तो वो शुद्ध है, और आजकल वैज्ञानिक क्रियाओं से अभी अनुसंधान चल रहा है सब जगह प्रयोगशालाओं में, और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हाँ ये गोबर वास्तव में बहुत शुद्ध है। तो देखिए वेदों की बातें वो सत्य सत्य हैं और आगे चल के सत्य साबित होंगी भी। तो ये भगवान ने जो शास्त्र दिए हैं उनके आधार पे अपना जीवन हमें जीना चाहिए। तो जब यहां ये लोग कहते हैं कि भगवान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कर्म ही सब कुछ है, तो इसमें हमें ये सोचना चाहिए कि कर्म का सिद्धांत ठीक है, लेकिन कर्म के फल देने वाले कौन है? कोई तो होना चाहिए ना। जब हम कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, हमने ऐसे कर्म किया तो ऐसे फल मिलेगा, लेकिन वो फल देगा कौन? देने वाला तो कुछ होना चाहिए। तो फिर आगे कृष्ण भगवान इस तर्क का उत्तर देते हैं। वो जानते हैं कि ऐसे कोई प्रश्न उठा सकता है, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं सबकी। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अस्ति चेद ईश्वर कश्चित फल रूपी अन्य कर्मणाम कर्तारं भजते सोपि नहीं अकर्तुः प्रभुर हि सह। अस्ति चेद ईश्वर कश्चित, यदि कोई ईश्वर है भी, ठीक है कर्म प्रधान है, कर्म के फल सबको मिलके रहेंगे, लेकिन यदि कोई ईश्वर है भी जो कि फल रूपी अन्य कर्मणाम, जो कि सबको कर्मों के फल प्रदान करता है, फिर भी क्या कर्तारं भजते सह अपि, फिर भी वो कर्म करने वाले के ऊपर निर्भर होता है। क्यों? नहीं अकर्तुः प्रभुर हि सह, क्योंकि अगर कर्म करने वाला व्यक्ति होगा नहीं जो कि कर्म करेगा, तो कर्म का फल कैसे देंगे? जब कर्म करने वाला आदमी होगा तब उसका फल देंगे भगवान। तो भगवान भी कर्म करने वाले के ऊपर अर्थात हम सब के ऊपर निर्भर हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अभी तर्क कर रहे हैं, मिथ्या तर्क, झूठा तर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको साबित धीरे धीरे से करना चाहते कि इंद्रदेव की पूजा नहीं करना। तो यहां पर भगवान कृष्ण बहुत चतुराई से कह रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि भगवान भी कर्म के सिद्धांत के अधीन है, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं ये कि कोई व्यक्ति ऐसे कर्म करता है तो भगवान बाध्य होते हैं उसे उस प्रकार का फल देने के लिए, परंतु सत्य तो ये है कि भगवान स्वतंत्र होते हैं, वो किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ये कर्म के कानून बनाए किसने, ये प्रश्न उठता है। ठीक है कर्म ऐसे कर्म किया तो वैसे फल मिलेगा, लेकिन ये कानून बनाया किसने? ऐसे कर्म करेंगे तो वैसे ही फल क्यों मिलेगा, दूसरी तरह का फल क्यों नहीं मिलेगा? किसने तय किया ये? कोई तो एक व्यक्ति होना चाहिए जिसने ये सारे कर्म के सिद्धांत को बनाया है, और जो इसको बनाए रखते हैं वो है भगवान। और ऐसे भगवान जिन्होंने इस कर्म के सिद्धांत को बनाया है वो इस कर्म के कभी अधीन नहीं होते, नहीं तो क्या मतलब भगवान का? त्रिभिर गुणमयीर भावेर एभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभि जानाति माम इभ्यः परमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारी दुनिया मोहित है, सारी दुनिया सोचती है कि मैं इन तीन गुणों सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अधीन हूं, लेकिन ये नहीं है। मैं हमेशा माम इभ्यः परम अव्ययम्, माम इन तीन, मैं इन प्रकृति के हमेशा कर्म के हमेशा मैं ऊपर रहता हूं, लेकिन सारी दुनिया इस सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अधीन है। भगवान श्री कृष्ण कभी कभी यहां अवतार लेते हैं भौतिक जगत में, लेकिन उस समय भी भगवान इस प्रकृति के अधीन नहीं होते हैं। वो स्वतंत्र रहते हैं, दिव्य स्तर पर स्थित होते हैं। कभी कभी समझ लीजिए कि कोई पागलखाना है, बहुत सारे पागल वहां पर भर्ती हुए हैं, और वहां पे राजा जाता है देखने के लिए कि यहाँ कैसी व्यवस्था है पागलों के लिए। वो भी प्रजा है, प्रजा का देखभाल करना राजा का कर्तव्य होता है। और राजा जाके पागल खाने में देखेगा सब कुछ कैसे, वो एक मरीज से बात करता है, कैसे हो भाई, मैं राजा हूँ। तो मरीज बोलता है, जब मैं यहाँ पहली बार आया तो मैं भी ऐसे ही बोलता था। तो मरीज क्या सोच रहा है कि भी राजा है, बोल रहा है, लेकिन ये थोड़ी राजा है, मैं भी ऐसे बोलता था जब मैं आया था। तो जब भगवान यहां आते हैं तो अज्ञानी लोग सोचते हैं कि ये भी हमारे जैसा ही आदमी है, ये भी कर्म के सिद्धांत के अंदर है, इसको भी कर्म के फल मिलने हैं, या तो फिर हम जो कर्म करते हैं वो कर्मों का फल उनको देकर ही रहना है। परंतु ऐसे नहीं है। भगवान ने ये सारी सृष्टि की रचना की है और ये सृष्टि से परे स्वयं रहते हैं। जैसे मकड़ी, मकड़ी अपनी जाल बनाती है और जाल बनाकर उसमें बहुत सारे कीड़े मक्खी वगैरह अटक जाते हैं, लेकिन मकड़ी अपने ही जाल में अटक नहीं जाती, अन्य पशु जो कीड़े होते हैं वो अटक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, और जब इसका पालन हो रहा होता है तो अपनी माया शक्ति से सबको, जीवों को बांध के रखते हैं, और जब सृष्टि का संहार करने का समय आता है तो सारी सृष्टि को अपने अंदर समेट लेते हैं। तो भगवान कभी अपने माया जाल में फंस नहीं जाते हैं, यह है भगवान की स्थिति। परंतु यहां पर श्री कृष्ण ऐसे झूठा तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। और भगवान अगर चाहें तो वो हमारे कर्म को बदल भी सकते हैं, भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं है। ये कर्म का सिद्धांत भगवान ने क्यों बनाया है? ताकि हम धीरे धीरे से पाप के कर्म को छोड़कर हम भक्ति की ओर आए, क्योंकि पाप करने से दुख आता है और दुख कोई नहीं चाहता। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि ये दुख क्यों आ रहा है, बुरे काम करने से, ये पाप करने से, तो मुझे दुख से बचना है तो पाप से बचना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए? फिर धीरे धीरे बुद्धिमान आदमी शास्त्रों के पास जाता है, भक्तों के संग में आने लगता है, सुनने लगता है कि भाई किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म नहीं करने चाहिए। इसलिए भगवान ने कर्म का सिद्धांत बनाया है। इससे हम जान सकते हैं कि यहां कोई एक भगवान है। तो क्योंकि भगवान ये तर्क कर्म मीमांसावाद या कर्मवाद का प्रस्तुत कर रहे हैं, इस झूठे सिद्धांत को हमें सच नहीं मानना चाहिए, लेकिन जानना चाहिए कि किस उद्देश्य से भगवान ऐसे कह रहे हैं। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं अपने पिता से, किम इंद्रियेह भूतानां स्वस्व कर्मानु अनुवर्तिनां अनिशेन अन्यथा कर्तुम स्वभाव विहितम ऋणाम। वो कहते हैं किम इंद्रियेह भूतानां, जब कर्म ही प्रधान है, हमने ऐसे कर्म किए तो वैसे फल मिलेंगे, तो इस कर्म और कर्म के फल में हम जब अटके हुए हैं तो इसमें इंद्र का क्या लेना देना है? किम इंद्रियेह भूतानां, इंद्र की क्या भूमिका है यहां पर? स्वस्व कर्म अनुवर्तिनां, और हम लोग केवल अपने कर्मों के फल के अनुसार सुख दुख का अनुभव करते रहते हैं। हमने अगर अच्छे काम किए हमें सुख मिलेगा, हमने पाप काम किए हमको दुख मिलेगा, तो इसमें इंद्र का क्या लेना देना है? अनिशेन अन्यथा कर्तुम स्वभाव विहितम ऋणाम। तो हमारा स्वभाव हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, जिसका जैसा स्वभाव वो वैसे वैसे कर्म करेगा। अलग अलग तरह के स्वभाव होते हैं लोगों के, और अलग अलग स्वभाव के अनुसार वो अलग अलग कार्य करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अब आगे इस कर्मवाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाकर इस सिद्धांत तक पहुंचे हैं कि स्वभाव ही सब कुछ है, सब कुछ स्वभाव के ऊपर निर्भर होता है। हम सबका स्वभाव है ना, सोचिए आपके परिवार में कौन कौन है, सबका अलग अलग स्वभाव है ना। अब जब यहाँ बेलगाम आ रहे थे तो हमारे साथ प्रवास करने वाले एक व्यक्ति, हम बातचीत चल रही थी तो हमसे बोल रहे थे कि हमारे मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़की है बहुत कंजूस है, 5 पैसे भी इधर उधर खर्च नहीं करती है। उसके बाद एक बेटा है, वो पैसे ऐसे खर्च करता है, पाँ है जेब में 5 पैसे, खर्च करता है 50 पैसे, बिल्कुल उल्टा है। और तीसरा बच्चा है मेरा लड़का सबसे छोटा, वो तो बस पैसे कमाने में लगा है, बोलता है कमाना ही सब कुछ है। अब वो कह रहे मुझे समझ में नहीं आता कि इन तीनों का स्वभाव, सब तीनों मेरे बच्चे हैं, इन तीनों का स्वभाव अलग 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 कैसे हो गया इतना। स्वाभाविक है, ये तो सब अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को लेकर आए हैं, सबके स्वभाव अपने पूर्व कर्मों से, पूर्व संग से बने हैं। और जैसे जैसे हरेक का स्वभाव होता है, जैसे जैसे उसने दुनिया में कर्मों से अपने गुणों से संग किया है, वैसे वैसे वो कर्म करेगा। तो इसलिए यहां पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि फिर स्वेच्छा के लिए क्या है, स्वभाव हमारा है, हम काम करते हैं, और इसमें देवतागण वो बाध्य होते हैं हमारे कर्मों का फल प्रदान करने के लिए। अगर मैंने कोई अच्छे पुण्य कार्य किए थे पिछले जन्म में, तो इंद्रदेव या कोई जो देवता हैं वो ऐश्वर्य देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो इंद्रदेव वगैरह के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो इंद्रदेव की पूजा क्यों करनी चाहिए, जबकि स्वभाव ही हमारा प्रधान है, कर्म ही प्रधान है, तो इनकी पूजा नहीं कीजिए। और आगे स्वभाव की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वभाव, स्वभाव, स्वभावत तंत्रो ही जनः स्वभावम् अनुवर्तते, स्वभावस्थम इदम सर्वम सदेवासुर मानुषम। स्वभाव तंत्र ही जनः, तंत्र मतलब नियंत्रण, जनः हरेक व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के नियंत्रण में है, अपने स्वभाव से बद्ध होकर व्यक्ति काम करता है, स्वभाव को बदलना कठिन है। स्वभावम अनुवर्तते, वर्तते मतलब जाना, अनुवर्तते पीछे पीछे जाना। तो जैसे हमारा स्वभाव, हम उस दिशा में आगे जाएंगे। अनुवर्तते, हमारा स्वभाव हमें अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। स्वभावस्थम इदम सर्वम स देवासुर मानुषम। तो यहां सब कुछ, सारा जो ब्रह्मांड है, इदम सर्वम स्वभावस्थम, स्वभाव के ऊपर आधारित है। देवतागण हो, मनुष्य हो, असुर हो, सब, सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि केवल स्वभाव के ऊपर स्थित है। वैसे जब श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे थे भगवद गीता बोलते समय कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, उन्होंने तरह तरह के तर्क प्रस्तुत किए। उसमें से एक तर्क जो अर्जुन को भगवान ने कहा जो सही था, कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय का, तो तुम स्वभाव बद्ध हो, इसलिए ये युद्ध करने की जो प्रवृत्ति है तुम्हारे अंदर है, ये स्वभाव तुमको युद्ध करने के लिए आज नहीं तो कल प्रेरित करेगी। इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार इस दुनिया में रहते हुए कर्म करना चाहिए तुमको, स्वभाव के विरुद्ध जाकर नहीं करना चाहिए। स्वे स्वे कर्मण्य भिरतः, तुम अपने अपने कर्म स्वभाव के अनुसार कर्म करो और इन कर्मों को मुझे अर्पण करो, लेकिन कर्म करना इससे दूर नहीं भागो। तुम्हारा स्वभाव तुम्हें युद्ध करने के लिए आज नहीं तो कल प्रेरित करेगा ही। प्रभुपाद जी एक छोटी सी कहानी बताते थे स्वभाव के बारे में, कि कैसे स्वभाव इस दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कहानी आपने भी पहले सुनी होगी कि एक साधु था, वो गंगा जी में स्नान करने के लिए गया। गंगा जी में स्नान करते समय गंगा जी की पूजा भी करना चाहता था, तो आप जानते हैं कि गंगा जी में अपनी कमर तक खड़े होकर फिर गंगा जी का जल लेते हैं और गंगा जी को ही अर्पण करते हैं मंत्रोच्चारण के साथ। तो कर रहा था, जैसे ही उसने जल उठाया तो जल में एक बिच्छू आ गया और बिच्छू ने डस दिया, काट दिया उस साधु को। वैसे बिच्छू तो नदी में डूब जाता, तट से बस आया होगा, किसी न किसी तरह से गिर पड़ा होगा उसमें, तो डस लिया। तो जैसे ही डस लिया तो उस साधु के हाथ खुल गए और वो बिच्छू पानी में गिर पड़ा। और जैसे ही गिरा, साधु ने देखा कि ये डूब जाएगा, मर जाएगा, तो तुरंत उसे उठा लिया और उसकी जान बचा ली। जैसे उठाया तो उस बिच्छू ने फिर से डस लिया साधु के हाथ को। जैसे डसा फिर से वो गिर गया बिच्छू, फिर से डूबने वाला था, फिर साधु ने उसे उठाया, फिर बिच्छू ने काट लिया उसको। तो सामने खड़ा एक व्यक्ति ने पूछा, कह रहे महात्मा जी, ये बिच्छू आपको इतना काट रहा है बार बार, फिर भी आप उसको बचाते जा रहे हो, ये क्यों? तो साधु ने कहा कि देखो, मैं एक भगवान का भक्त हूं, साधु हूं, मेरा एक स्वभाव है करुणा। मेरे स्वभाव के अनुसार क्षमा और दया, ये दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं। ये भगवान कहते हैं कि भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये मुझे डस रहा है तो वो उसके स्वभाव से बद होकर डस रहा है ना, उसका क्या कसूर है? वो तो उसका स्वभाव ही वैसे है। बिच्छू का स्वभाव है कि बिना कारण किसी को डस लेता है, जैसे सांप होता है कभी कभी बिना कारण काट लेता है, डस लेता है। तो ये बिच्छू अपने स्वभाव से बद्ध है, वो डस रहा है मुझे, तो वो अपने स्वभाव से बद्ध है और मैं मेरे स्वभाव से बद्ध हूं, तो हम दोनों अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जब कंस देवकी की हत्या करने वाले थे तो वसुदेव ने रथ के ऊपर बहुत कंस से निवेदन किया कि देखो नहीं मारो, ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारी कितनी बदनामी होगी कि किस प्रकार के क्षत्रिय तुम हो कि बहन की शादी अभी अभी हुई और वो पति के घर जा रही है और तुम उसी दिन उसी समय बहन की हत्या कर रहे हो। किसी स्त्री की हत्या करना क्या क्षत्रिय के लिए शोभा देता है? और वो भी तुम्हारी बहन है, वो भी छोटी बहन, और वो भी उसके शादी के दिन, तो ये अच्छा नहीं है। तो ऐसा करो, जब कंस नहीं मान रहा था तो वसुदेव ने अंततः कहा, मैं वचन देता हूं तुम्हें, आकाशवाणी हुई है कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे जैसे मेरे बच्चे होते हैं मैं आके उन बच्चों को तुम्हें सौंप दूंगा, ठीक है, तुम देवकी को मारना नहीं। तो कंस रुक गया। कंस बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, असुर था। असुर का स्वभाव होता है बहुत स्वार्थी होना, बहुत ही क्रूर होना, तो घमंडी होना। तो कंस हालांकि इतना क्रूर था कि अपने स्वार्थ के लिए बहन की भी हत्या इस प्रकार से करने के लिए तैयार था, फिर भी सोचने लगा कि हाँ, वसुदेव ये तो एक साधु आदमी है, इनका स्वभाव, ये स्वभाव से ये सत्य बोलते हैं, सत्यवान है ये, तो इसलिए कभी झूठ नहीं बोलेंगे, भले इनको कितना कष्ट हो आगे। जब वो सोचेंगे कि मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे को कंस के हवाले कर दूं, कंस बच्चे की हत्या करेगा, कितना दुख होगा, वो दुख सहन करके आके दे देगा, देवकी नहीं कर पाएगी क्योंकि वो महिला है, अपने बच्चे से ज्यादा आसक्ति होगी। लेकिन वसुदेव वचनबद्ध होकर, क्योंकि वो सत्यवान है, वो आके बच्चे को मेरे हवाले कर देगा। तो हालांकि कंस इतना दुष्ट था, लेकिन उसने देख लिया कि वसुदेव का स्वभाव मैं जानता हूं, इसलिए वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो देवकी को छोड़ दिया। और वास्तव में वसुदेव पहले बच्चे को लेकर कंस के पास आए। कंस को आश्चर्य हुआ, अरे देखो ये कैसा आदमी है, अपना वचन रख रहा है और अपने बच्चे को लेकर आया है। तो जब सज्जन के सामने दुष्ट व्यक्ति भी आता है तो कभी कभी दुष्ट आदमी का भी हृदय पिघल जाता है। तो कंस का हृदय थोड़ा पिघल गया। कंस सोचने लगा कि खैर अंततः आठवां पुत्र है ना जो मारेगा, तो पहले पुत्र की बच्चे की हत्या मैं क्यों करूं। तो कंस ने कहा, नहीं नहीं ठीक है वसुदेव, अब ले जाओ इस बच्चे को, ये तो पहला बच्चा है ना, चलो चलो ठीक है ले जाओ, और तुम बहुत सत्यवान हो, तुम आए हो बच्चे को लेकर, तो ले लो वापस ले लो। तो वसुदेव ने बच्चे को ले तो लिया, लेकिन जब लिया वसुदेव मन में सोच रहे थे कि कंस का स्वभाव वो जानते थे, ये दुष्ट आदमी है जो केवल इंद्रियों को तृप्त करना ही जीवन का सब कुछ मानता है। जीवन का ध्येय क्या है? भोग करना, और जो भी भोग के लिए आवश्यक है वो करना, और भोग में अगर कोई बाधा आए तो उसे नष्ट करना। अगर हमारी बहन भी क्यों ना हो, हमारा भांजा भी क्यों ना हो, नष्ट करना, मार डालना। तो वसुदेव जानते थे कि कंस का स्वभाव क्या है, कि आज ऐसे कल वैसे। तो अभी ये करुणा की भावना से प्रेरित होकर दे रहा है बच्चा, बच्चे को वापस, लेकिन कल फिर से आएगा बच्चा मांग लेगा, कोई भरोसा नहीं। कैसे सोचते हैं, मनोरथे नास्ति धावतो बही, मन के रथ के सवार हो ऊपर सवार होकर दुनिया में लोग इधर उधर भोग करने के लिए जाते हैं, घूमते हैं। तो जो मन के रथ के ऊपर सवार होता है और मन चंचल होता है, तो ऐसा व्यक्ति के ऐसे व्यक्ति के संकल्प भी चंचल ही होंगे, स्थिर नहीं, दृढ़ नहीं हो सकते। इसलिए वसुदेव ने जान लिया कि कंस का स्वभाव ऐसे है, दुष्ट स्वभाव का है, भोगी व्यक्ति है, और भोगी व्यक्ति को भरोसा नहीं कर सकते। स्वभाव से ये दयावान नहीं है, इसलिए कब ये बदलेगा कुछ कह नहीं सकते। तो कंस ने वसुदेव के ऊपर पूरा विश्वास किया, क्योंकि वो वसुदेव का स्वभाव जानते थे। वसुदेव कंस के ऊपर विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि वो भी कंस का स्वभाव जानते थे। और वाकई जैसे वासुदेव को शंका थी, डर था, वैसे ही हुआ, क्योंकि नारद मुनि से प्रेरित होकर वहां पर कंस फिर से वो बच्चे को लेकर आए, और दोनों को, कंस और देवकी और वसुदेव को, फिर से कारागार में बंद कर दिया और बच्चे की हत्या कर दी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि स्वभाव ये कितना महत्वपूर्ण है। स्वभाव से सब कुछ चलता है, ये सही है, परंतु फिर भी ये स्वभाव के परे भी कौन है, क्या है? भगवान है। भगवान श्री कृष्ण इस स्वभाव को बदल सकते हैं, इसलिए तो हम सब भक्ति मार्ग में आए हैं। हमारा स्वभाव क्या है? हमने पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार जो हमें फल मिलते हैं, जो हमारी वृत्ति बनी होती है, मानसिकता होती है, उसको स्वभाव कहते हैं। अगर हमारे कर्म ही हम बदल दें, हम भगवान की सेवा में लग जाएं भक्तों के आदेश अनुसार, तो धीरे 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 से हमारा स्वभाव भी बदल जाएगा। एक भक्त बता रहे थे कि कैसे उनका स्वभाव बदल गया। वो बोल रहे थे कि एक बार मैं रेलगाड़ी में जा रहा था और मैंने सामने वाली सीट में पैर रखा था, और कोई व्यक्ति आया और उसको बैठना था वहां, और उसने कुछ अपशब्द बोले कि ये सीट किसकी है, तुम्हारी है क्या, और कुछ और आगे कुछ बोल दिया। तो भक्त कह रहा था, अगर मैं भक्त नहीं होता, मैं पहले का अगर होता, तो मैं तुरंत उठ जाता और बहुत कुछ हो जाता आगे चल के। लेकिन मैंने क्या कहा, मुझे भी आश्चर्य हो गया। मैंने कहा अरे नहीं नहीं भाई साहब आइए आइए, मैंने सीट को साफ किया, उसको बिठा दिया और उसके बाद हम अच्छे दोस्त बन गए दोनों। क्या देखो स्वभाव कैसे बदल जाता है। हालांकि स्वभाव इस दुनिया में बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है, फिर भी भगवान की भक्ति करने से ये स्वभाव बदल जाता है धीरे 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 से। जो आदमी पहले बहुत कुछ कर देता था, आज उसके सोचने का ढंग, उसके कर्म सब बदल जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हम सबको करनी चाहिए। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से हमारे पूरे कर्म बीज सहित नष्ट हो जाते हैं। जो हमारे कर्मों के बीज जो उसकी जड़ हैं, जड़ से उखाड़ कर ये भक्ति इनको फेंक देती है और हम शुद्ध हो जाते हैं धीरे 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 से। इसलिए हमें भगवान की भक्ति का के मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। फिर आगे कृष्ण भगवान कहते हैं देहान उच्चावचान जंतु प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रुर मित्रम उदासीन कर्मैव गुरु ईश्वरः। वो कहते हैं देहान उच्च अवचान जंतु प्राप्य उत्सृजति कर्मणा। कर्मणा मतलब कर्म से जंतु को, एक प्राणी को देह, किस प्रकार का देह, उच्च अवचान, ऊंचा देह नीचा देह, चाहे वो देवता का देह हो, मनुष्य शरीर हो या नीचा देह, जैसे कीड़े का शरीर है, एक पेड़ का शरीर है, ऐसे मिलता है। क्यों मिलता है? केवल कर्म के अनुसार प्राप्त होता है और कर्म के अनुसार ऐसे योनि को, ऐसे शरीर को त्याग देता है। तो शत्रुर मित्रम उदासीन कर्मैव गुरुरीश्वरः। तो कर्म ही हमारे शत्रु है, कर्म ही हमारा मित्र है, कर्म ही हमारे गुरु हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे सब कुछ हमारा कर्म ही है। और देवतागण भी कर्म से बंधे हुए रहते हैं। देवतागण हमें ऐसे कुछ नहीं दे सकते जो हमारे प्रारब्ध के बाहर है। जो हमने कर्म किए हैं पूर्व जन्मों में, उनका फल हमें मिलकर रहेगा। देवतागण इसमें इसके भीतर आके हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो देवतागण भी उनके स्वयं अपने कर्मों के ऊपर भी निर्भर होते हैं। उनके लिए भी अमुक समय होता है जहां जब कोई पुण्य काम करता है तो वो देवलोक को प्राप्त होता है। देवलोक को प्राप्त होकर जब दिव्य देव भोगान, अनेक वर्षों से देवलोक में वो देवताओं के सुख का अनुभव करता है, लंबे समय के बाद फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, फिर से पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं यहां पृथ्वी लोक पर जन्म लेता है। तो देवतागण भी कर्म के सिद्धांत के अधीन है और वो हमारे कर्म में, हमारे प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। परंतु भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसे नहीं है। भगवान श्री कृष्ण हमारे कर्म को बदल सकते हैं। हमारे कर्म और विकर्म, इन दोनों के चक्र को नष्ट करके हमें वो भगवान के धाम में ले जा सकते हैं। तो ये फर्क है दोनों में। तो भगवान श्री कृष्ण चिंतित हैं कि ये सब तो मेरे नित्य पार्षद हैं, ये ब्रजवासी, और यहाँ ये मुझसे इतना प्रेम करते हैं, और ये अभी इंद्रदेव के पास क्यों जा रहे हैं? ये ठीक नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन मनन करता है, मेरी सेवा आदि करता है, हमेशा नित्य युक्त उपासते, प्रतिदिन मेरी सेवा में रत रहता है, तो योग क्षेम वहाम्यहम्। जो उसे आवश्यक है मैं उसे प्रदान कर देता हूँ, और जो उसके पास है उसकी रक्षा क्षेम मैं करता हूँ। तो सभी को भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, ये निष्कर्ष हुआ। परंतु अगले ही श्लोक में, बाद वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे भी कोई लोग होते हैं जो मेरे शरण न लेकर अन्यों के शरण लेते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते पिमाम एव कौन्ते यजन्ति अविधि पूर्वकम्। वो कहते ये अपि, ऐसे भी लोग हैं जो अन्य देवता यजन्ते श्रद्धयान्विता, जो श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, मेरी उपासना नहीं करते हैं। तो ये सही नहीं है। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते पिमाम एव कौन्तेय, हालांकि वो भी मेरी ही सेवा है क्योंकि ये देवतागण मेरे अंश हैं, फिर भी यजन्ति अविधि पूर्वकम्, ये मेरी पूजा करने का सही तरीका नहीं है। भगवान चाहते हैं कि हम सीधे उनके शरण में जाएं, ऐसा नहीं कि हम इंद्र चंद्र वरुण गणपति आदि सबके हम शरण में जाएं, नहीं। बार बार गीता का यही निष्कर्ष होता है, इसलिए सीधे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना उनके भक्तों के संग में, यह भगवद गीता का और श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष है। और जहां तक कर्म अपने आने वाले या अगले ऊंचे नीचे योनि के शरीर को प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कारण है, इसके पीछे हमें जानना चाहिए कि कर्म जो भी हो, लेकिन शरीर प्रदान करने वाला व्यक्ति भी कोई चाहिए। भागवत में कहा गया है कर्मणा दैव नेत्रेणा, कि जब मृत्यु के समय आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाता है तो सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है, और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो कि हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान हैं, उनके निर्देशन के अनुसार उस आत्मा को एक दूसरा शरीर मिलता है। जैसे करनी वैसे भरनी, उसने जैसे कर्म किए हैं वैसे एक अनुकूल उपयुक्त शरीर उसे प्राप्त होता है। लेकिन इस कार्य का देखभाल कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो अगर ये सही है कि देह या कर्म के अनुसार एक प्राणी को ऊंचा या नीचा शरीर मिलता है अगले जन्म में, सही है, लेकिन कौन देता है? भगवान देते हैं। इसलिए हम सबको भगवान के शरण में जाना चाहिए। और आगे चल के भगवान अपने इस कर्म सिद्धांत को आगे बढ़ाने वाले हैं और भी तर्क प्रस्तुत करेंगे, तो हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे कल शाम को, कितने बजे? 6:30 बजे यहाँ मंदिर में, और आगे चल के धीरे धीरे हर शाम कथा होगी और हम गोवर्धन लीला की चर्चा अंततः करेंगे, क्योंकि ये अभी प्रसंग चल रहा है, धीरे धीरे से हम गोवर्धन लीला की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन लीला के लिए अभी एक आधार बना रहे हैं, बुनियाद बना रहे हैं, धीरे धीरे से बेस तैयार कर रहे हैं गोवर्धन लीला करने के लिए। तो कल शाम को भगवान श्री कृष्ण के जो और तर्क हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। तो आपके कोई अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, माइक है, माइक यहाँ दे दीजिए। प्रश्न ये है कि कल बताया गया था बलराम जयंती के दिन पर कि बलराम जो है वो सेवक भगवान है, कृष्ण की सेवा करते हैं, और वो गुरु तत्व हैं, आदि गुरु हैं, तो जो गुरु होते हैं क्या वो भी सेवक भगवान कहलाते हैं? गुरु भगवान नहीं होते, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। बलराम जी के प्रतिनिधि होने के नाते उनको सम्मान उस प्रकार से किया जाता है, परंतु हमें जानना चाहिए कि वो भगवान नहीं है, भगवान के प्रतिनिधि हैं, अचिंत भेदाभेद तत्व। क्योंकि वो प्रतिनिधि हैं, भगवान की वाणी को ही बोलते हैं और भगवान के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, भगवान की इच्छा की पूर्ति करने के लिए वो शिष्य स्वीकार करते हैं, इसलिए वो भगवान से अभिन्न माने जाते हैं। फिर भी वो भगवान है नहीं। जब प्रभुपाद जी को ऐसे कभी कभी कहा जाता था तो उनको बहुत क्रोध आता था। वो कहते थे, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं। तो गुरु भी भगवान के श्रेष्ठ दास होते हैं, वो कभी भगवान नहीं होते। हालांकि शिष्य का कर्तव्य होता है कि उनको भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उस प्रकार से सम्मान करना, परंतु तत्व की जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है? हाँ जी, कहाँ से प्रश्न आया है?
हरे कृष्णा। हाँ, हम तो क्षत्रिय नहीं है, लेकिन युद्ध करने का स्वभाव कैसे आ गया हमारा? हर सबके साथ युद्ध होता ही।
युद्ध? एक बार ऐसे हुआ कि एक भक्त था जो अन्य भक्तों के साथ झगड़ा करता था, तो कई शिकायतें गई प्रभुपाद के पास कि प्रभुपाद जी, ये भक्त के बारे में क्या करना चाहिए? है अच्छा भक्त लेकिन सबके साथ झगड़ा करता है, क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद ने कहा, उसको हरिद्वार भेज दो, वहाँ बहुत मायावादी लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान है ही नहीं, भगवान ये है वो है, भगवान का रूप नहीं है, उनके साथ झगड़ा करने दो, उनको भेजो ताकि वो अपनी झगड़ा करने की प्रवृत्ति जो है वो उनके साथ करे, भक्तों के बीच में नहीं करे, और खूब जाके वहां प्रचार करे। तो इसलिए झगड़ा करने की प्रवृत्ति अगर हमारे अंदर है भी तो भक्तों के अंदर नहीं करना चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि बस खामखा जाकर किसी से झगड़ा कर लिया, नहीं। अगर हम भक्ति ठीक ठाक करेंगे तो ये जो झगड़ा करने की प्रवृत्ति है वो भी कम हो जाएगी। हमें सही तरह से साधना करना चाहिए, सही तरह से श्रवण कीर्तन करना चाहिए। अगर हम वैष्णवों के दास बनेंगे तो ये सब बिना वजह के झगड़े करने की प्रवृत्ति वो कम हो जाएगी। हाँ,
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
अभी बलराम जी को हम लोग आदि गुरु कहते हैं
जी,
और जैसा भगवान श्री कृष्ण को इष्टम वंदे जगत गुरु कहते हैं, तो दोनों में से कौन आदि गुरु?
वैसे तो श्री कृष्ण है, क्योंकि बलराम जी भी तो श्री कृष्ण से ही आते हैं, लेकिन इस गुरु तत्व को, गुरु तत्व संभालने के लिए ही तो श्री कृष्ण बलराम बने हैं। बलराम श्री कृष्ण में अंतर नहीं है। जैसे हम कल के सुन रहे थे कि श्री कृष्ण और बलराम एक ही हैं, स्वभाव एक ही, केवल देह अलग हो गए हैं सेवा के लिए। तुम्हें कोई विरोधाभास नहीं है। यहां एक प्रश्न है, निंदा करना क्या यह भी आदमी का स्वभाव हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं, लोग होते हैं, स्वभाव होता है सबका। कोई होता है जो हमेशा नकारात्मक दृष्टि से देखता है, सब कुछ सब दोष ही देखता है, उसका स्वभाव होता है ऐसा निंदा करना। कोई होता है जो अच्छे ही गुण देखता है। युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन को द्रोणाचार्य ने एक कार्य दिया, दोनों से पहले तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि जाओ देखो कि सारे राजधानी में कोई भी बुरा आदमी है या नहीं, ढूंढ के ले आओ उसको यहां। और दुर्योधन से कहा जाके देखो सारी राजधानी में कोई भी अच्छा आदमी है या नहीं। तो दुर्योधन ने गया सब जगह ढूंढ लिया, फिर वापस आए। हाँ दुर्योधन बोलो, तुम्हें कोई अच्छा आदमी मिला राजधानी में? मैंने बहुत ऊंचा नीचा छान मारा, एक भी अच्छा आदमी नहीं, केवल एक आदमी मिला दुर्योधन, और तो कोई नहीं, और कोई नहीं मिला। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ दुर्योधन। फिर युधिष्ठिर, अच्छा युधिष्ठिर आओ आगे, कोई बुरा आदमी मिला तुमको? हाँ मिला एक आदमी। कौन? मैं। क्यों? नहीं, ऐसा हुआ कि मैं ढूंढ रहा था इधर उधर, और मैंने अचानक देखा कि एक वैश्य है, वो कुएं से पानी निकाल रहा है, और आज एकादशी है। उस जमाने में सभी लोग, हर एक व्यक्ति एकादशी के दिन निर्जल उपवास रखता था। हर एक आदमी, आम आदमी भी जो सड़क का है, वो भी निर्जल उपवास रखता था। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैंने देखा कि एकादशी के दिन ये आदमी कुएं से पानी निकाल रहा है, मैंने सोचा ये पीने के लिए निकाल रहा है, तो ये अच्छा नहीं है, तो मैंने उसके अंदर दोष देखा। फिर बाद में मैंने देखा कि उसने पानी निकाला है अपने लिए नहीं, अपने गाय के लिए, गाय को पिला दिया। फिर मैं सोचने लगा कि देखो ये आदमी निर्दोष है, लेकिन मैंने उसके अंदर दोष देखा तो मैं दोषी हूं, तो मेरे अंदर ये दुर्गुण है दोष देखने के। तो आपने कहा कि हमारे राजधानी में कोई बुरा आदमी है ये नहीं देखो, दूसरे कहीं जगह में अच्छे आदमी, बुरे आदमी को नहीं पाया, ढूंढ पाया, लेकिन केवल एक आदमी है। तो स्वभाव में अंतर होता है ना। तो निंदा करने की प्रवृत्ति ये भी होती है, ये भी स्वभाव के अनुसार होती है। स्वभाव क्या, हमारे जिस प्रकार से हम पाले पोसे गए हमारे माता पिता से, क्या उसके ऊपर निर्भर होता है? थोड़े हद तक हाँ, काफी हद तक, क्योंकि हमें पता ये भी जान लेना चाहिए कि बच्चे जो होते हैं वो पूर्व जन्म से अपने स्वभाव को लेकर भी आते हैं। जैसे हमने उस व्यक्ति का उदाहरण दिया, उनके तीनों बच्चे जो हैं, भरण पोषण, पालन पोषण, संस्कृति संस्कार सबको एक समान मिले, लेकिन तीनों के संस्कार अलग, तीनों के स्वभाव अलग अलग हुआ। इसका मतलब क्या है कि पूर्व जन्म पे भी उनके कोई स्वभाव थे जो लेकर आए थे यहाँ पर साथ में। लेकिन हाँ, बचपन से ही हमें देखना चाहिए कि बच्चों को अच्छा स्वभाव देने के लिए अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, घर में बहुत ही एक अच्छा आध्यात्मिक वातावरण बनना चाहिए, घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनका व्यवहार परस्पर ठीक होना चाहिए। जैसे बड़े व्यवहार करते हैं, जैसे उनका बोलचाल होता है, रहन सहन होता है, बच्चे भी वैसे ही नकल करते हैं। इसलिए बड़ों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक घर में आदर्श व्यवहार बनाए रखें और अच्छे संस्कार बच्चों को दें, अच्छे भगवान की भक्ति करें। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हर घर में हर दिन नाम संकीर्तन होना ही चाहिए, और हर एक व्यक्ति घर का साथ में बैठना चाहिए, चाहे बड़े हों या बूढ़े हों। हाँ, हरे कृष्ण।
क्योंकि हम देखते हैं किसी अमुक व्यक्ति का स्वभाव एक अलग तरह से होता है, तो क्या हमें प्रयास करना चाहिए कि उस व्यक्ति का स्वभाव बदला जा सके? क्योंकि स्वभाव ऐसे बदलता नहीं है, लेकिन क्या हमें प्रयास करना चाहिए या उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए?
स्वभाव बदलना असंभव तो नहीं है, मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, इसलिए प्रयास तो कर सकते हैं। कभी कभी स्वभाव बदलना मुश्किल हो जाता है, जैसे दुर्योधन के साथ हुआ। सब ने प्रयास किया, धृतराष्ट्र ने, गांधारी ने, कृष्ण ने, विदुर ने, भीष्म, द्रोण, सभी ने प्रयास किया, लेकिन किसी की नहीं मानी दुर्योधन ने। लेकिन कभी कभी व्यक्ति का स्वभाव बदल भी सकता है, और विशेष करके भगवान कृष्ण की कृपा हो तो क्यों नहीं बदल सकता। तो उस व्यक्ति को अगर भक्ति मार्ग में ले जाया जाए, और अगर वो भक्ति मार्ग में है भी, तो धीरे धीरे से और गंभीरता से अगर भक्ति मार्ग को स्वीकार करे, उसके श्रवण कीर्तन में और ज्यादा गंभीरता से वो करे, और नम्रता से भक्तों की सेवा करे, तो क्यों नहीं स्वभाव बदल सकता है, अवश्य। हालांकि इतना आसान भी नहीं है। परंतु धीरे धीरे से ये संभव हो सकता है। यहां और एक प्रश्न है, जीव में भोग करने की इच्छा होती है तो परमात्मा या भगवान उसे क्यों नहीं बदलते हैं, जबकि भगवान परम पूर्ण या सर्वशक्तिमान है। इसका उत्तर यह है कि भगवान हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जीव और भगवान का संबंध एक प्रेम का संबंध होता है और प्रेम जहां होता है वहां स्वतंत्रता होना आवश्यक है, जबरदस्ती प्रेम नहीं किया जा सकता है। इसलिए भगवान हमारी स्वतंत्रता को छोड़ देते हैं। पतंजलि योग और सांख्य दर्शन से भगवान को कैसे जान सकते हैं? जानने की आवश्यकता नहीं है, जब ये भक्ति मार्ग है हमारे पास, जो सबसे सुलभ मार्ग है भगवान को जानने के लिए, तो इन सब चीजों के पीछे हमें क्यों जाना चाहिए? केवल जानकारी के लिए हम जान ले कि ऐसे भी दर्शन होते हैं दुनिया में, हमें जान लेना चाहिए और इस पथ को पकड़ लेना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चाश्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम्। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चाश्मि तत्त्वतः, तत्त्वतः केवल भक्ति से ही तुम मुझे जान सकते हो हे अर्जुन। तो भगवान को जानना है केवल इस भक्ति मार्ग से संभव है। यहां प्रश्न है कि ग्रहण के समय हम प्रसाद ले सकते हैं कि नहीं। साधारण तौर से ग्रहण का समय जो होता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, यह अशुद्ध काल समझा जाता है, इसलिए इस समय भगवान की अर्चा पूजा वगैरह नहीं होती है और हम पकाते भी नहीं हैं कुछ और खाते भी नहीं हैं। ये एक प्रथा है, क्योंकि हम अशुद्ध हो जाते हैं उस समय, तो अशुद्ध अवस्था में भगवान की सेवा हम नहीं करते हैं, ये एक प्रथा है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कर्म मीमांसा सिद्धांत या दर्शन कहा, तो नंद महाराज जी ने क्यों नहीं उसका प्रतिकार किया, खंडन क्यों नहीं किया नंद महाराज ने? क्योंकि ये सब नित्य सिद्ध जीव हैं जो भगवान के पार्षद हैं, वो सब शास्त्र जानते हैं, तो क्यों उन्होंने उत्तर नहीं दिया? वैसे देखिए, हालांकि ये सब नित्य सिद्ध हैं, भक्त भगवान के धाम से आए हैं, लेकिन ये लीला कर रहे हैं एक साधारण गांव वाले लोगों का, और इसलिए वो साधारण अपना जीवन बिता रहे हैं। और इस लीला में भगवान श्री कृष्ण इंद्र देव के मान भंग की लीला के द्वारा हम सबको सिखलाना चाहते थे कि ये घमंड कितना खतरनाक होता है, और साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ये सुंदर लीला करना चाहते थे, गोवर्धन पर्वत को धारण करना चाहते थे, अपने भक्तों का प्रेम बढ़ाना चाहते थे, इसलिए ये सारी चर्चा इस प्रकार से हुई। इस जमाने में मनुष्य स्वयं भगवान मानते हैं और लोगों से पैसे निकालते हैं, तो उनका क्या कहना है? तो नहीं जाना चाहिए ऐसे लोगों के पास में। जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूं, उनको कहना चाहिए आप गोवर्धन धारण कीजिए, कृष्ण भगवान ने जैसे किया था वैसे, फिर हम मानेंगे आपको कि आप भी भगवान हैं। मायावादियों के कठोर स्वभाव को कैसे बदला जा सकता है? उनको कृष्ण भक्ति में ला के, और कृष्ण भक्तों के अगर अंदर कोई गलती है तो कैसे सुधारा जा सकता है? और तीव्रता से कृष्ण भक्ति करके। हम भक्ति में आने से पहले बहुत सा हमारे पुराने स्वभाव को लेकर आए हैं, हमारे अनर्थों को, बुरी आदतों को, बुरी वृत्तियों को अनेक जन्मों से एकत्र करके लेकर आए हैं, तो एकदम से ये सब नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम बड़े तीव्रता से, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्रता से जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तब ये पुरानी आदतें, बुरी वृत्तियां सब नष्ट हो जाएंगी और हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी इस भक्ति मार्ग को बहुत ही तीव्रता से, बहुत गंभीरता से लीजिए। सब अपने अपने घरों में आप भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण माला के ऊपर कीजिए और संकीर्तन रूप में भी, साथ साथ भगवान को भोग चढ़ाकर ही आप प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण कीजिए। यहाँ मंदिर में रोज आइए दर्शन के लिए, रोज नहीं हो पाता है तो हफ्ते में जितने दिन हो सके उतने आइए, सत्संग में बैठिए, कीर्तन कीजिए, प्रवचन सुनिए, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए और अपना जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो अभी सूचनाएं हैं,
सर्वप्रथम हम श्रीमान देवान प्रभु का स्वागत करना चाहेंगे और धन्यवाद भी देना चाहेंगे इतनी सुंदर वाणी से, इस मधुर कृष्ण कथा के बारे में हमें अवगत कराया। आशा करते हैं आप सब ने इसका लाभ लिया होगा। तो तीन बार जोर से हरि बोल बोलकर उनका धन्यवाद दी। और आप इसका आगे